आत्मानुशासन लेक्चर नंबर 67 ओम नमः सिद्धेश्य ओम नमः सिद्धेश्य ओम नमः सिद्धेश्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सौवसाहूणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य रचित यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है, उस पर क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी जी के जो प्रवचन है, उस आत्मानुशासन प्रवचन दूसरी पुस्तक, उसमें हम पृष्ठ संख्या 19 पर आ गए हैं। ये बंद करना पड़ेगा, मशीन की कुछ आवाज आ रही है। यहाँ हम पढ़ते हैं, यहाँ पहले लाइन से क्लेश मुक्ति का बीज यत्न 19 पृष्ठ। संसार समुद्र में फंसा हुआ यह जीव अनादि काल से दुख भोग रहा है। इन समस्त दुखों से छूटने की जरा सी कुंजी है। ये बहुत कठिन नहीं है, कहते बहुत आसान है, जरा सी कुंजी है। जिसने कुंजी पाली, कुंजी समझते अर्थ है कुंजी का, चाबी चाबी, हाँ कुंजी का अर्थ होता है चाबी। जिसने कुंजी पाली उसको सुगम है, और न पाया तो उसे कठिन अथवा असंभव है। इस देह के अंदर सोचने वाला, चिंतन करने वाला कोई सत पदार्थ है ना? सत यानी कायम टिकने वाला, सत जिसका अस्तित्व होता है वो अनादि अनंत रहता है। यानी जहाँ यहाँ कोई भिन्न पदार्थ है, शरीर से जुदा है, और विचार करने वाला, जानने वाला, सोचने वाला पदार्थ तो जुदा है। जिसको लोग मैं कहा करते हैं, यानी मैं की उसको तो अनुभूति हो रही है, परंतु कौन हो इसमें डिफर, यानी गलती हो रही है। मैं हूं ये बात बिल्कुल 100% गारंटी हर एक को, यही कहते हैं ना, मैं आया, मैंने किया, मैंने सोचा, वह मैं क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप एक झलक में जान जाता है। जैसे महल का बनाना एक सेकंड में नहीं बनता, कोई व्यापार आदि का चलाना एक सेकंड में नहीं बनता, सांसारिक साधनों की बात एक मिनट में नहीं होती, किंतु यह आत्मस्वरूप की झलक एक मिनट नहीं, एक सेकंड नहीं, उसके भी कई हिस्सों में जितना समय हो जाता है उतने में हो जाता है। छोटा सा अंतर जिसको असंख्यात समय कहेंगे, एक झलक में जान जाता है, कहता है यानी उसके लिए कुछ बहुत समय नहीं लगता है, किंतु अनादि काल से बात क्या हो रही है, इतना आसान है क्यों नहीं हो रहा। मोह वासना से दूषित इस आत्मा को ज्ञान भावना और ज्ञानाभ्यास की विशेष जरूरत है। ज्ञान भावना ने उस रूप भवन, उस रूप होना, यानी वो स्वयं है ज्ञान स्वरूप, मान लिया उसने, ऊपर ओढ़ लिया सारा अपनी मान्यता में, कल्पना में खड़ा कर दिया, अंदर जैसा स्वरूप है उसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ उसके। मानव जीवन का लक्ष्य, सच पूछो तो यह मानव जीवन एक आत्म स्वरूप का परिचय पाकर उसमें मग्न होकर आत्म कल्याण करने के लिए है। और हम कहां कहां लगा रहे सोचना जिसको उसको हुँ? यह निर्णय जब तक न किया जाएगा तब तक तो भटकना पड़ेगा। पहले में पहले उसमें लगाने के पहले उसका निर्णय तो होना चाहिए कि बस करने योग्य यही काम है, अन्य कुछ करने योग्य नहीं है। तो जब तक निर्णय नहीं तब तक तो भटकता रहेगा और वह जीवन यो ही व्यर्थ खो दिया जाएगा, क्योंकि आज तक अनंत भव धारण करके खो दिए है, ऐसा ये भी चला जाएगा। पहली बार मानव हुआ ऐसी बात नहीं है, मनुष्य तो अनंतो बार हुआ, इतना ही क्या, मुनि दीक्षा धारण करके ग्रेवेक तक पहुंच गया, तो क्या शास्त्राभ्यास भी नहीं किया था? किया था। ये मर्म नहीं पहचाना, आत्मा को नहीं पहचाना, यह बात सबकी अपनी अपनी है। एक इस आत्म साधना के सिवाय बाकी अन्य जो क्रियाएं हैं उनमें खूब परख लो, उनको करके अंत में लाभ कुछ न मिलेगा। और हमें महत्ता तो क्रियाओं की आती है, कितने घंटे वहां पूजा की, क्या क्या कैसे किया, कितना पर्वत चढ़ के आए, क्या दान दिया, है ना। यहां तक कि शास्त्र अभ्यास से भी नहीं होना, आत्म साधना करनी पड़ेगी। शास्त्र अभ्यास इसलिए करना कि उसमें मार्ग हमको पता चलता है, हमकी भूल पता चलती है। इसलिए वर्तमान में भी यह कल्पना मात्र है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा घर है, यह मेरी स्त्री है, और फिर उन सब का भाग्य तुम्हारे भाग्य में समाया हुआ है क्या? यह भी विश्वास नहीं होता कि जितने घर में प्राणी है उन सब का भाग्य उन सबके साथ है। इतना भी विश्वास न हो तो फिर अनाकुलता पाने की तो चर्चा ही क्या की जाए। यानी प्रत्येक स्वतंत्र है, उसके परिणाम जुदे जुदे हैं। तो ऐसा भी हो जाता है ना, कोई घर का व्यक्ति कुछ अन्य रूप से परिणित हो जाए। हाँ देखो क्या काम कहते हैं कि जितने प्राणी उनका सबका भाग्य उनके साथ है, उनके परिणाम जुदे जुदे हैं, उनके उदय जुदे जुदे हैं, उनका भाग्य नहीं कर्मों के, फिर भी उसका विश्वास नहीं हो जाता है और ये आकुलता करता रहता है। अरे यह संभव है, घर में रहने वाले जो लोग हैं उनका भाग्य तुम्हारे भी भाग्य से अधिक अच्छा हो सकता है ना। ऐसा भी होता है कोई बच्चे को बचपन से पिताजी कुछ नालायक है तो कुछ न ठल्ला है, कुछ करता नहीं है, ये नहीं वो नहीं करते, और वो तो ऐसा भी हो सकता है कि करोड़पति अब्जोपति हो जाए। होता है कि नहीं होता है, तो हम आमतौर पर देखते बाहर। और यदि उनका भाग्य ऊंचा न होता तो कमाने की कला अच्छी जानने वाले आप उनकी सेवा क्यों करते। ये समझ में है, जो कुछ नहीं कर रहा है, बाप बहुत कमा रहा है और लड़के की सेवा कर रहा है, तो उसका पुण्य ज्यादा है कि नहीं, ये कह रहे। यानी भले वो जाके पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, परंतु सारे पिता भी दास होकर उसकी सब सेवा कर रहे, ये कह रहे। इस लोक में चिंता की बात तो कहीं रंच भी नहीं है, चिंता के ढंग से अपना ज्ञान बनाया तो चिंता बनती है, नहीं तो कहीं चिंता की बात ही नहीं है। ज्ञानियों का बल। यह संसार यद्यपि खारे समुद्र से भी भयानक है, फिर भी जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे इस मोह के ग्रास के मुख से अलग बने रहते हैं। वहां बताए थे ना, उपमा दी थी मगरमच्छों के ऐसे मुंह फाड़े हुए है, तो कोई विरला ही दूर से चला जाता है, वैसे इनकी बात है। बाह्य दृष्टि करके किस ओर दौड़ लगाई जाए कि जहां मेरे को शरण मिल जाए। बाहर में आलंबन देने वाले तो मिल जाएंगे, पर यह सब धोखा है। कोई मेरी रक्षा कर सके ऐसा किसी दिशा में दौड़ लगाकर कहीं पहुंच जाने से कोई मिल जाए तो बता दो। कहीं इस जीव को शरण नहीं है, इसका शरण तो स्वयं ही है। स्वयं ही यह है, वह स्वयं ही उसका शरण है। क्योंकि शरण के लिए कोई भगवान हमारे लिए शरण है क्या, यानी उनके शरण से मैं बच जाऊं, पैसे के शरण से मैं बच जाऊं, डॉक्टर के शरण से, दवा के शरण से, है ना? इंश्योरेंस वाला वो क्या करेगा, वो आपको मरना पड़ेगा उसके लिए और वो आपको नहीं मिलेगा पैसा जब बाह्य पदार्थों का विकल्प त्याग कर ज्ञान पुंज मात्र अपने को अनुभव करे, बस उसी की शरण मिलेगी। फिर रही यह बात कि आखिर फिर भी तो शरीर लगा है, इसको खिलाना पिलाना और व्यवस्था करना फिर भी तो आवश्यक है, ठीक है, पर उसके लिए जीवन न समझो। यानी यह स्वयं कौन है? चैतन्य चक्रवर्ती। और ये क्या है? हाड़ी चमड़ी। और दिन भर वो चमड़ी का पॉलिश करते रहता है और क्या कर रहे हैं? इससे तो रहित होने का प्रोग्राम है अपना। ज्ञान भावना का पूजक क्षण, ये ज्ञान भावना कहो, आत्म भावना कहो, हमने वो आत्म समाधि भी देखे थे ना समाधि तंत्र में भैया, कोई क्षण ऐसी भावना तो आए कि मैं शरीर से रहित खुद ही खुद रह जाऊं, ऐसा विचार तो आए कहते हैं। हाँ वो स्वामी जी ने भी, वो तो खुद ही खुद रह जाऊ, यानी वो तो आप जो कह रहे हैं वो अमृतचंद्राचार्य ने कहे कि पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, ऐसा बोला है ना कि थोड़ा अंतर्मुख के लिए पड़ोसी तो हो जाए। इसकी सफलता क्या कहे, ऐसी भावना बनाओ कि मैं केवल अपने आप से रह जाऊं। इसकी सफलता देह में दृष्टि करने से न मिलेगी। दृष्टि करना यानी उसको मैं मानना, यानी देह को मैं मानने से ये बात नहीं बनेगी। दृष्टि यानी केवल उसको जानना, उसको देखना, ये उसका अर्थ नहीं होता है। हाँ उसमें एकत्व अहमपना, यानी देह मैं हूं ऐसी बुद्धि। उससे तो ये सफलता नहीं होगी। यह आत्मा तो बड़ा समर्थ सत है। बड़ा समर्थ सत यानी जो सत सत होता है, कौन सत होता है? सत द्रव्य लक्षणम, जो जो द्रव्य है वो सत है, और स्वत तो स्वयं अपना उत्पाद व्यय और ध्रुवता करता है, उसके लिए किसी अन्य सत की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं रहती। यह बताए ना, स्वयं सामर्थ्यवान बड़ा समर्थ सत है। देह दृष्टि से तो, यानी देह मैं हूं इस मान्यता से तो देह मिलने की परंपरा ही बढ़ेगी, यानी और नए नए आयु बनते रहेंगे और नए नए भाव में चला जाएगा। और आत्मदृष्टि रखोगे, यानी यह मैं आत्मा हूं, जीव द्रव्य हूं, ऐसे रखेंगे, आत्मदृष्टि रखोगे, देह से विविक्त यानी जुदा ज्ञान मात्र आत्मा का अनुभव करोगे तो देहों का मिलना छूटेगा। इतनी सरल बात है। जब तक देह मैं हूं मानते रहेंगे तो नया नया देह मिलता रहेगा, जब देह से मैं भिन्न आत्मा हूं ऐसा मानेंगे तो कहते देहों का मिलना छूट जाएगा। भले वो दो चार पांच देह धारण भी करने पड़े पर अभी वो इस संसार में नहीं रुलेगा। ऐसी भावना करो कि मुझे तो इस शरीर से भी न्यारा रहना है। सर्व शरीरों से जुदा केवल ज्ञान स्वरूप मात्र मुझे रहना है। केवल यानी मात्र ज्ञान स्वरूप, ओनली सिर्फ ज्ञान स्वरूप। यह अपना प्रोग्राम यदि नहीं बन पाया तो फिर मंदिर में किस लिए आते हैं, सो बताओ? मंदिर में सुबह तो सुबह पहले वहां जाते हैं, अष्टद्रव्य से चढ़ाते हैं, सब विधि पूर्वक नमस्कार करते हैं। आवाज क्यों आई फोन में से? कुछ चालू है क्या फोन आपका शोभा? शोभा हाँ देखो अभी हम पढ़ते हैं, तो कहते ये प्रोग्राम नहीं बना क्या कि मुझे, मैं आत्मा हूं और ये देह से जुदा हूं और मुझे उस रूप रहना है, यदि हमने ऐसा नक्की नहीं किया तो मंदिर में क्यों जा रहे हैं? एक रूटीन बना है इसलिए, नहीं हमारे माँ बाप भेजते इसलिए हम जाते हैं, क्या ऐसी बात है? हाँ, एक इस प्रयोजन को छोड़कर अन्य कोई प्रयोजन मन में हो और उन उद्देश्यों से मंदिर में आना हो रहा हो तो फायदे की बात कुछ न मिलेगी। अन्य कौन सा प्रयोजन हो सकता है? क्यों जाते हैं मंदिर में? अरे कोई मन्नत तो मांग, कोई तो मांगने के लिए ना कि हाँ क्या कहूँ, पुण्य कमाने, पुण्य से क्या मिलेगा? अनुकूलता, सुख मिलेगा, हमने मान के रखा है। कौन सा सुख? संयोग वाला सुख, इंद्रियों वाला सुख, जो एक्चुअली सुख नहीं है क्योंकि उसके पीछे अकुलता पड़ी है, हमने देखा था। तो उसके लिए अगर जाते हैं और पुण्य वो तो बंद है, उससे मोक्ष तो नहीं होने वाला, यानी शरीर का धारण करना छूटेगा तो नहीं, एकाध भव मिल भी जाएगा देव का, तो वहां अभी मिथ्यात्व के साथ वहां पर जाता है तो वहां तो इतना वैभव ये सब भोगने की भी आकुलता एक बात, और जहां मरने का प्रसंग अभी 6 महीने बाकी है तो अभी मरना है वो ख्याल में आता है, अभी हम मर जाएंगे तो इतनी आकुलता होती है, इतनी, क्योंकि इतने सागरों का आयु, पल्लों का आयु, ये तो बहुत बड़ी आयु है। अब कहते हैं अभी उनको ऐसा पता लगा अभी यहां से मरकर जाना है तो इतना विलाप कोई, अभी यहां से भी हम देखते हैं जिसको कोई तत्व का अभ्यास नहीं, कहो या अन्य भी, अन्य मतियों में भी कोई ऐसे होते हैं कि इतना शोक, इतना रोना धोना कि मुझे कैंसर हुआ, अभी मरना है, अभी 2 महीने रहे, अभी इधर जाओ उधर जाओ, इतने अंदर से तड़पण 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 करते हैं। वैसे अगर वो देव करेंगे तो एक इंद्रिय में जाके उत्पन्न होते हैं। यहाँ पुण्य से गए ना देव में और वहां से चले गए केंद्रीय में डायरेक्ट। हाँ अभी हम 20 पेज पर पढ़ रहे हैं कि यदि देह से हमें छूटकर आत्मा रूप रहना है कायम के लिए, ऐसा अगर हमारा प्रोग्राम न बन जाए तो कहते मंदिर में क्यों जाते हो? चौथी लाइन, एक इस प्रयोजन को छोड़कर अन्य कोई प्रयोजन मन में हो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है उसके लिए जाते हूँ, या हमारे बहुत घर में तकलीफ है इसलिए जाते हैं, या पुण्य कमाएंगे तो अच्छा भाव मिलेगा इसलिए जाते हैं, तो कहते उस उद्देश्यों से मंदिर में आना हो रहा हो तो फायदे की बात कुछ न मिलेगी। क्योंकि अन्य मतियों के संस्कार भी है ना, वो तो अपने भगवान के सामने जाके रगड़ते रहते कि मेरा बच्चा बीमार है, कहो या मेरे परीक्षा में पास कर दो, मेरे माँ बाप को अच्छा कर दो, जो कुछ है, फिर भगवान को गाली भी देंगे, मैंने इतना किया आपके लिए, इतना किया बस, इस तरह से। तो भले ही कुछ मंद कषाय होने से पुण्य बंद हो जाए, प्रथम तो इसका ही विश्वास नहीं है कि मंद कषाय है, यानी ये भी कषाय है, मंद कषाय है और उससे बंद होगा। क्या एक तेज बोलने से ही तीव्र कषाय कहलाता है? मुंह भरा रहे, तृष्णा बनी रहे, राग बना रहे, लोभ बना रहे, बाह्य वस्तुओं को अपनाने की बुद्धि रहे, यह तो गुस्सा करने वाले से भी तेज कषाय है। समझ में आई बात? तीव्र कषाय कौन सा लगता है? जो बहुत भड़क कर कुछ बोल देता है उसको कहते हैं बहुत गुस्सा वाला, बहुत तीव्र कषाय। और हम लोभ करते हैं दिन भर, वो मंद कषाय लगता है। यानी केवल गुस्से से किसी को बोल देना या झगड़ा करना, यही तीव्र कषाय लगता है, पर हाँ वो दिखता है, पर मान माया लोभ भी उसमें भी तेज तीव्रता हो सकती है कि नहीं हो सकती? वो दिखती नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है तुम स्वाध्याय करते हो और ऐसा गुस्सा क्यों करते हो, और स्वाध्याय नहीं करते दुकान में बैठेंगे दिन भर, और वो गिराई पटाने के लिए कुछ भी मायाचारी करे तो वो मंद कषाय लगती है, वो तीव्र कषाय नहीं लगती है, ये कहना धंधा है। यहाँ लिखा ना, फिर से पढ़ते, मोह भरा रहे, तृष्णा बनी रहे। ये दिन भर दुकान में 8-8 घंटे जाएंगे तो तृष्णा तो है ना, अभी कोई अच्छा बड़ा अपना व्यवसाय हो जाएगा, आज कोई अच्छी आमदनी हो जाएगी, ये क्या है, तृष्णा तो है। हाँ, 10 घंटा खड़े राग बना रहे, लोभ बना रहे, बाह्य वस्तुओं को अपनाने की बुद्धि रहे, ये तो बुद्धि है ना, पैसा मैं कैसा अधिक से अधिक कमाऊं, यह तो गुस्सा करने वाले से भी तेज कषाय है, ये तेज नहीं लग रहे। ख्याल में नहीं क्या कहना चाहते, मंद कषाय भी कहां हुआ, अब सोच लीजिए क्या कह रहे हैं कि भगवान के सामने जाकर इनकी इच्छा करना ये तो और तीव्र कषाय हो गई, ये कहां मंद है। केवल भक्तिवश वहां जाना, मंदिर में पूजा करना, वो बात अलग है, उसको मंद कषाय कह भी सकते हैं, पर यहां तो क्या कहते हैं, कोई तृष्णावश, रागवश, मिथ्यात्ववश वहां जाता है तो वो तो और तीव्र कषाय है। अब सोच लीजिए, यदि चित्त में यह बात नहीं समाती है तो मंदिर में आकर कोई लाभ की बात नहीं पाए, तो क्या इतना फुकड़ गया सब, बिना विचार के तो क्या उस क्रिया का, कुछ क्रिया का तो फल होता ही नहीं है, परिणाम का फल मिलता है, किस परिणाम से जा रहे, क्या कर रहे हैं। प्रभु मार्ग के अनुसरण का निर्णय, और वहां पर भी मंदिर जाता है, द्रव्य चढ़ाता है, पर भगवान क्या है, उनका स्वरूप क्या है, कुछ पता नहीं है। और ऐसे ही जिसको कहेंगे ना बहुतांशी लोग 99% ऐसे ही चले जाते हैं, मंदिरों में चले जाते हैं, साधुओं के पीछे चले जाते हैं, जो कुछ उनको जो कोई यथायोग्य मार्ग दिखाने वाले उनको लगता है तो उनके पीछे चले जाते हैं। प्रभु मार्ग के अनुसरण का निर्णय, भैया यह निर्णय बनाओ, मंदिर आते ही प्रभु की मूर्ति को निरख कर प्रभु के परिणमन में जो बातें गुजर रही थी, प्रभु के परिणमन में जो बातें गुजर रही थी, अभी हम सुबह धवला में अपना चल रहा है, उपशम श्रेणी की बात है, अभी तो क्षपक श्रेणी की तो आनी है, तो प्रभु के परिणामों में ये सभी बातें गुजर रही थी कि नहीं रही थी, उनके परिणाम में, उनके परिणमन में, उनके परिणाम कैसे कैसे श्रेणी मांडी होगी, मुनि अवस्था कैसी होगी जब वो मुनि थे, या उसके पहले जब उन्होंने सम्यक तो प्राप्त किया था, फिर कैसे वैराग्य हुआ, कैसे सब छोड़कर दीक्षा ली, ये तो बाह्य आचार की बात है, पर अंतरंग में परिणामों की बात करेंगे तो अंतरंग में कैसा भेद विज्ञान चल रहा था बारम्बार, किस तरह से अंतरंग में विशुद्धि बढ़ी, किस तरह से श्रेणी चढ़ी, अभी तो हम देख रहे हैं ना नवे गुण स्थान में कितने क्या क्या बातें होती है। तो ये प्रभु को देखकर उनको अभी तो वीतरागी है, पर उन इन सभी परिणामों से गुजरे हैं ना वो, ये बात बता रहे हैं। देखो, मंदिर आते ही प्रभु की मूर्ति को निरख कर प्रभु के परिणमन में जो बातें गुजर रही थी, उन सब दृश्यों को अपने उपयोग में ले आए और उनके चरित्र को निरख कर अपने में ऐसी भावना जगावे कि हे प्रभु, जिस मार्ग से आप चले उस मार्ग पर चले बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। कौन सा मार्ग चला, उन्होंने भी सम्यक तो प्राप्त किया, वितरागता उत्पन्न हुई, अंतरंग में स्थिरता द्वारा मुनि पद स्वीकारा, फिर और अंतरंग में स्थिरता द्वारा केवल ज्ञानी हो गए, हमें भी इसी मार्ग से मिलेगा। उनका चरित्र ने उनके तो पाप, देखो किसी भी तीर्थंकरों का भी जो चरित्र है, चरित्र ने उनके जो पूर्व भवों की कुछ बातें बताते हैं, उसमें क्या आता है, पुण्य और पाप के तो खेल होते हैं उसमें, किसी को ऐसा भी होता है कोई राजा था और कोई स्मशान में चला जाता है, कैसी कैसी आपत्तियां होती है उसमें, यानी उनके तो पूर्व पुण्य पाप का फल बता दिया जाता है और बाद में वो कैसे मुनि दीक्षा लेते हैं, क्या क्या कैसे विचार करते हैं, ये सब बातें महत्व की। जब हम किसी सिद्ध क्षेत्र पर भी जाते हैं तो पर्वत चढ़ते समय भी यही विचार आने चाहिए कि यहाँ इतने इतने मुनियों ने, करोड़ों अब्जो जीवों ने यहाँ से निर्वाण प्राप्त किया है, तो किस तरह से उनके परिणाम कैसे कैसे रहे होंगे। देखो, जिस मार्ग से आप चले उस मार्ग पर चले बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता, आपने जो किया वह श्रेष्ठ ही किया, वह मेरे करने लायक काम है। ऐसी उपासना का प्रोग्राम मन में न आए तब तक नाम मात्र के हम धर्मी पुरुष है, नाम मात्र के जैनी है। वास्तव में धर्म का पालन हो और दुख रह जाए यह हो ही नहीं सकता। धर्म की शुरुआत होते ही सुख की अनुभूति होना शुरू हो जाता है। यहाँ क्या लिखते हैं, धर्म का पालन हो और दुख रह जाए यह हो नहीं सकता। राग करते रहो तो राग इटसेल्फ दुख है। राग आग दहे सदा, और उसमें एकत्वपना का दुख और ज्यादा होता है। धर्मी को तो भले पर्याय में राग है उतना दुख भी है, परंतु धर्म शुरुआत हुआ है वहां वहां सुख की निराकुलता की शुरुआत हो गई उनकी। यही कह रहे, दुख रह जाए ने अभी उसका दुख नहीं रह सकता। उसमें धर्म का नाम लगाया जाता रहे और कषायों की बात ही पोषी जाए, वहां अनाकुलता का क्या काम है, यानी वहां अकुलता ही अकुलता है। फिर से वाक्य पढ़ो, यानी धर्म का नाम लगाया जाता है, धर्म के नाम पर अगर कषायों का ही पोषण होता है, ये राग करो या अमुक करो, ये वैसा करो वे वैसा करो, राग का पोषण होता हो तो कहते वहां अकुलता ही अकुलता है। देखो कितनी बिल्कुल प्योर बात बताई उन्होंने। क्या उपकार किया, वो गए इसलिए आप आए? ऐसा नहीं है, नहीं नहीं, आप ऐसा सोचती थी कि इतने जीव सिद्ध होते हैं इसलिए उसमें निकलते हैं, हाँ हाँ इसलिए मैं निकले इसलिए वो मेरा उपकार है, ऐसा नहीं है। पूजा करने में किसकी पूजा करने, पहले उनका स्वरूप भी नक्की करना पड़ेगा। समझ में आती है बात, अंतर बाह्य दोनों स्वरूप ऐसा ही है, क्योंकि जिस पद उन्होंने प्राप्त किया अनंत पद, वो कैसा हो सकता है, वो बिल्कुल निर्णय होना चाहिए। यानी आप सरलता से पूछती भी है और अपनी कोई जो बातें गलत है उस पर भी विचार करती, इसको ये आपके लिए बता रही। संसार रूपी भयानक समुद्र और उससे तिरने का उपाय, यह संसार खारे समुद्र से भी भयंकर स्थल है। कोई जीव ऐसे समुद्र फंस जाए जहां खारा पानी है, बड़ी तेज लहरें उठ रही है और कहीं कहीं बीच से अग्नि के भयंकर संताप उठ रहे हैं, जिसको बड़वा नल कहते हैं, पानी में जो अग्नि पड़ता है, और नीचे हजारों मगर फिर रहे हैं, तो सोचो उसको कितनी व्याकुलता और बेचैनी है। ऐसे ही जानो कि जहां संसार सुख का खारा जल भरा हुआ है, संसार सुख बताए हो और वो खारा जल है, खारे जल से तृषा नहीं बूझती, वैसे संसारिक सुख से उसको तृप्ति नहीं होती है, आशा आकुलता इच्छा चिंता सब बनी रहती है। पीवे तो प्यास बढ़े तृष्णा बढ़े, जहां मानसिक चिंताओं की भयंकर धाराएं चल रही है, ऐसे स्थल में यह जीव कितना दुखी है। देखो पानी में भी भभका उठता है और आनंद निधान इस आत्मा में भी मानसिक दुख के बड़वानर का भभका उठ रहा है, बीमारी बन रही है। डॉक्टर साहब बीमारी की दवा दो, अरे जो तुम्हारे रोग है उसके तो हमारे पास दवा ही नहीं है। छोड़ दो चिंता, समस्त पर है। समस्त में समस्त शरीर सहित समस्त पर जो है वो पर, उसकी चिंता छोड़ दो। शरीर में रोग आया उसकी चिंता छोड़ दो, वो पर द्रव्य है। क्या कहते हैं, क्योंकि मानसिक बीमारी है ना, अरे मैं रोगी हुआ, मैं पैरालाइज हुआ, मैं अभी मर जाऊंगा, ये क्या है? मानसिक की तो बीमारी उसने कल्पना में खड़ी कर दी है। अन्य पर तो बच्चों की चिंता, बीबी की चिंता, पति की चिंता, माँ बाप की चिंता, धन की चिंता, वो तो पर है ही है। शरीर से ही शुरुआत करो तो सब पर समझ में आ जाए। तो कहते छोड़ दो चिंता, समस्त पर है। उनकी चिंता, उनका शोक, उनका विचार, मोह, व्यामोह और आकुलता छोड़ दो। कभी ऐसा भी लगता है ना, अरे हमें तो ठीक मार्ग पर आ गए, हमारे बच्चे तो अभी किधर किधर भटक रहे। कहते छोड़ दो चिंता, समझाने का विकल्प आया, समझाने का कार्य हो रहा है, इसको जानो। वो भी हो रहा है, उसको जान सकते आप, परंतु मैं उस रूप नहीं हूं और उससे आकुलता का काम नहीं है। ख्याल में आए? वही तो कह रहा हूं, बच्चे सुनते नहीं है, उनको समझाने का विकल्प आता है, वो राग है। हम अपने राग को जान सकते हैं परंतु अपने से जुदा है विकल्प। उनको समझाने का कार्य भी हो रहा है, ये भाषा वर्ग है, शब्द हो रहे हैं, उनको भी हम जुदाई से जान सकते हैं ना। अभी ये जो बोलने का प्रोग्राम चल रहा है, हम तो उससे जुदे हैं, तो हम जुदेपना का निर्णय चल रहा है, उसके बोलते समय ये निर्णय चलता है कि नहीं चलता है, उस समय भी ये जुदाई का है, तो उसको हम निर्णय तक ले लेते हैं मन में। यही कह रहे हैं कि उनके यानी समझाने का भी कार्य हो रहा है, उनको वो समझ जाए तो अच्छा है, ये भी भाव आ रहा है, मैं उनसे जुदा हूं, मैं जानने वाला हूं। उस काल में भी ऐसा अपना अनुभव चलना चाहिए और ये तभी बन सकता है आत्मानुभूति पूर्वक। तो छोड़ दो चिंता, समझाने के लिए ऐसा ही कहेंगे ना, पहले में पहले हम अपनी चिंता से दुखी है, उसके बिहेवियर से दुखी नहीं, अपनी चिंता से दुखी है। वो मेरा है और वो ऐसा बिहेव करेगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, या वो उसका क्या होगा, आगे चलकर उसके क्या हो जाएगा भविष्य, इसकी चिंता में हम डूबे रहते हैं। तो कहते उनकी चिंता, उनका शोक, उनका विचार, मोह, व्यामोह और आकुलता छोड़ दो। कोई परिस्थिति ऐसी हो कि न छोड़े जा सके तो वहां यह समझकर छोड़ दो, हमारे वश की परिस्थिति तो नहीं है। अब जैसा जो जहां परिणमन होगा हो लेगा, जरा सी औषधि है। कौन सी औषधि? ये अपने को सबसे जुदा समझ लो, ये औषधि है। अपने को सबसे न्यारा जान लो, चिंताएं त्याग दो, जैसा समय गुजर रहे गुजरने दो, और उसमें भी अरे अरे क्या करे, ऐसे दिन आए हैं, अरे रोने धोने की कुछ बातें नहीं है। ख्याल में उसमें अनिष्टपना की कल्पना करके हमारे ऐसे चले गए, क्या करे, हमने बहुत पाप किए, ये रोने धोने के लिए नहीं है, अपना स्वरूप समझने के लिए अवसर है अपना। अतीत और भावी निर्णय, अहो यह जीव भव भव में भी व्यामोह नहीं छोड़ता और मरण कर जाता है, दूसरे भव में भी पहुंचकर व्यामोह नहीं छोड़ता। यह सोच, यह बात, यह चाल अनादि काल से चली आ रही है। यह चालन है ऐसा ही परिणमन, ऐसे ही उसकी बातें, जिस भव में जाता है वह ऐसा ही करता है। हम अभी मनुष्य है, हो सकता है पहले भी मनुष्य भव से आए हो या कई तीर्यंच देवनार के कहीं से आए हो, तो वहां पर भी कोई हमारे मित्र परिजन कुटुंबी कोई थे कि नहीं थे? अभी उनकी चिंता हो रही है क्या? वैसे ही यहाँ चिंता कर करके मर जाओगे, मर जाओगे, उसके बाद तो नए भव में चले जाएंगे। वहां चिंता तो की होगी ना, की होगी उनके लिए की होगी, तो यहाँ आ गए, यहाँ इनकी चिंता कर रहे हैं और चले जाएंगे और मिले जाएंगे। चिंता करने के लिए इसको बहुत कोई मिल जाएंगे, इसको आदत पड़ी है ना चिंता करने की, इससे बहुत जरा सी औषधि है क्या? अपने को सबसे न्यारा जान लो, इन चिंताओं से ही राग द्वेष से भी मैं न्यारा हूं, ये पहले नक्की करो, इसको समस्त पर में डाल दो। पेज नंबर 21। इस संसार समुद्र में यह मोह रूपी ग्राह अपना मुख फाड़ रहा है जीवों को लीलने के लिए। इस मोह से तो दूर विचर, जो दूर विचरता है, विचरता है ना, चलता है, दूर से चला जाता है, जो इस मोह के विषय से तद्रूप नहीं होता, ख्याल में आई बात, यानी वो राग द्वेष मोह से जो तद्रूप नहीं होता, अपने को उस रूप होकर मान नहीं मान रहा है, ऐसे जीव संसार में दुर्लभ है, थोड़े है। अब कहते हैं ऐसे जीव बहुत हो जाए तो यह संसार फिर चल न सके। संसार कैसे चलेगा, देखो संसार में कितने प्राणी हैं, इतने प्राणी हैं कि अब तक उनमें से अनंत जीव मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं और अनंत काल तक मोक्ष को प्राप्त होते ही रहेंगे। आज संसारी जीवों की संख्या का अनंतवा हिस्सा भर मुक्त जीव है और अनंत काल के बाद तक भी संसारी जीवों की अनंतानंत हिस्से रूप अनंत की संख्या मुक्त जीवों की रहेगी, यानी सब जीवों का अनंतवा भाग भी इतनी बड़ी बृहद राशि है, अनेक अनंत होने पर भी वह अनंतानंतवा भाग है, यानी आज से और अनंत काल बीत जाएगा तो भी संसारी राशि से जो सिद्ध राशि वो अनंतवा भाग ही रहेगा। संसारी राशि पूरी की छोड़ दो बात, एक निगोद शरीर में जितने जीव है उसके अनंत वे भाग प्रमाण जीव सिद्ध हो जाएंगे। और ऐसे सिद्ध निगोद के शरीर कितने हैं, असंख्यात लोग को 5 बार लिखकर आपस में गुणा करो इतने हैं। और एक निगोद शरीर के जीव भी 3 काल में मुक्त नहीं होंगे, उसका अनंतवा भाग मुक्त होगा। एक निगोद शरीर में जितने जीव है कितने है? सिद्धों से अनंत गुणे हैं। हाँ, उसके अर्थ क्या, सिद्ध राशि है जो उसका अनंतवा भाग है, यानी सिद्धों से अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में है। यानी क्या हुआ, एक निगोद शरीर में जितनी संख्या है उसके अनंत वे भाग प्रमाण जीव 3 काल में सिद्ध हो गए। क्या पूछा शोभा, क्या पूछा?
वो आपने जो कहा ना, असंख्यात लोग को 5 बार गुणा करने के बाद जो जीव है,
जो संख्या आती है उतने निगोद के शरीर है और एक एक शरीर में जितने अनंत है उसका अनंतवा भाग प्रमाण सिद्ध जीव है। हाँ देखो पेज नंबर 21, अभी नया पैराग्राफ। जैसे 1 अरब रकम में से एक एक पैसा निकलता जाए तो उसे यह भी कह सकते हैं कि अरब का करोड़वा हिस्सा है और 100 हो जाए तो करोड़वा हिस्सा है। ऐसे ही समझिए अनंतानंत में से कई अनंत निकले वह भी अनंतानंतवा भाग है। एक निगोद शरीर के जितने जीव मिलते हैं उतनी भी संख्या नहीं हो पाएगी अनंतानंत काल तक मुक्त जीवों की, उससे भी अनंत गुणे होंगे। यह संसार सारा क्लेशमय है फिर भी ज्ञानी पुरुष में ऐसी सामर्थ्य है कि वह मोह के ग्रास से दूर रहता है। वह निकट संसारी, निकट संसारी ने भी संसार से मुक्त होने वाला है, छूट जाने वाला, निकट भव्य कहते हैं उसको, निकट संसारी भी कहते हैं। अल्पकाल में वह मुक्ति को पाएगा, अपना प्रोग्राम भी यही बनाना है। 88 नंबर। अभिच्छन्नैः सुख परिकरैर्लालितालोल रम्यै श्यामाङ्गीनां नयन कमलैरर्चिता यौवनान्तम् धन्योऽसि त्वं यदि तनुरियं लब्धबोधोर्मृगीभिः दग्धारण्यस्थलकमलिनी शङ्कया लोक्यते ते। इसका अर्थ देखते हैं। जिनी विषय विच्छेद न होई ऐसे सुख के समाज तिनी करी तो पाल्या हुआ है और मनोहर अंगयुक्त स्त्री तिनके चपल रमणीक जे नेत्र तेई भय कमल, तीन करी पूजित सम्मानित, ऐसा यह शरीर था। बहुरी यौवन अवस्था का मध्य विषय पाया है ज्ञान जाने, ऐसा तू सो तेरा वैसा शरीर भस्म भया। वन की स्थल कमलिनी की आशंका करी, जो हरिणी करी अवलोकिए, तो तू धन्य है। देखो भावार्थ भी बता रहे, यानी ऐसे जीवों ने भी जो दीक्षा धारण की तप किया उसकी बात यहाँ कर रहे कुछ। देखो
पहला उदाहरण समझ में आया, ये हरिणियों का उदाहरण क्या, वन में हरिणियों द्वारा
वनों में कमल की आशंका ने कमल मिल जाएगा इस तरह से वो हरिणी जो ढूंढते हैं। देखो हम पढ़ेंगे भावार्थ, आपको ख्याल आ जाएगा। जैसा अभ्यास होई तैसे प्रवर्ते, ऐसी प्रवृत्ति है। यानी हमारे जिसके अभ्यास है, जिसके हमको बारंबार, जिसका अभ्यास ही कहेंगे, उसे प्रैक्टिस है कहेंगे। ताते दुखिया दुख सहे तो सहे, परंतु पूर्वे पुण्य उदय करी, सुख समाज स्त्री आदि कारण नीतय परम सुखिया होए रहे थे। बहुरी ज्ञान पाए यौवन अवस्था विषय ही, दीक्षा धारी तप करी ऐसे भय। यानी बाकी सब सुख सुविधाएं थी, स्त्री वगैरह सब कुछ था, समाज यानी सब प्रकार से सुखी थे, फिर भी यौवन अवस्था में उसने तप धारण किया, ऐसे भय ने ऐसे हुए। जिनको हरिणी सारिखा चंचल जीव, जल्या हुआ ठूठ सारिखा अवलोके है, ते जीव धन्य है। अच्छा यानी जैसे वो जला हुआ कुछ वृक्ष का ठूठ समझता है उसको, ऐसे मुनिराज ऐसे स्थिर तप में वो उन्हें अपने आत्मा भावना में, हाँ कहते ना जले हुए ठूठ जैसा समझती है। सर्व प्रकार स्तुति योग्य है, देखो आत्मज्ञान की कोई ऐसी ही महिमा है। आत्मज्ञान परम सुखिया तीर्थंकर चक्रवर्ती, ते दीक्षाधारी मेरुवत निश्चल भय। बाहुबली आदि ऐसा प्रतिमा योग दिया, जहां बेली लपटाई। सुकुमाल जी के सरस्यों चुभे थी, सो स्यालिनी खाने लगी तो भी निश्चल रहे। ये समझ में आता है, जब राजकुमार थे तब तो गद्दी के नीचे भी कोई सरसों आए तो भी उनको चुभती थी, और मुनि दीक्षा लेके चले गए और स्यालिनी ने खाया तो भी निश्चल रहे। इत्यादि पुरुष भय ते धन्य है। यानी जिन्होंने ऐसा ऐसा मार्ग अपनाया उनको यहाँ धन्यवाद दे रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। देखो वीर सुकुमारों को धन्यवाद, वे पुरुष धन्य हैं जो गृहस्थावस्था में बड़े लाड़ प्यार से पाले गए और अनेक प्रकार की संपन्नता के सुख भोगते थे। वे कदाचित ज्ञान वैराग्य जगने पर सकल संन्यास करके स्थिर आसन से निश्चल उपयोग रखे, जो एक ज्ञान स्वरूप का अनुभवन करे, जिसके ऐसे स्थिर शरीर को निरख कर ठूंठ जानकर हरिणियां अपना अंग खुजलाएं, ऐसी स्थिति जिनकी हो वे महाभाग धन्य है। उनकी स्तुति कर रहे कि जिन्होंने ऐसा आत्मज्ञान भी पाया और ऐसा निश्चल आत्मस्थिरता भी पाई। जिन्होंने ऐसे सुख पाए हैं, जिनका विच्छेद नहीं हुआ। कोई पुरुष तो सुख का विच्छेद होने पर कुछ हैरानी मानकर भावुकता परित्याग कर देते हैं, किंतु जिसके लिए धन्यवाद कहा जा रहा है उस पुरुष की बात यहाँ यो बताई गई है कि जिसके भी जीवन में सुख का कभी विच्छेद नहीं हुआ, सुख के समान सुख के साधन तिस्कर पाला हुआ है। उन्होंने सकल संन्यास करके आत्मीय आनंद पाया है, पाया है। क्या कहना चाहते हैं? लौकिक में प्रतिकूलता आ जाए, कोई दुख के प्रसंग बने, तो ऐसे में दीक्षा देने वाले भी मिलते हैं। ये कैसा है? सभी सुख के साधन बिल्कुल उपलब्ध थे। यौवनावस्था भी थी, ऐसे भी नहीं कि बहुत अभी चलो वृद्ध हो गए, अभी सब करते हैं तो अपने को भी करना पड़ेगा, मरना है, इसलिए भी नहीं। तो कहते सभी सुख के साधन थे, फिर भी उन्होंने सकल संन्यास धारण किया, उनको यहां धन्यवाद दे रहे हैं। वीर सुकुमाल, जैसे सुकुमाल मुनीश्वर की कथा है, जो बड़ी ही सुकुमार क्रियाओं से पाले गए थे, जो रत्नों की ज्योति से दीप्त महल में निवास करते थे, दीप की शिखा भी जिन्होंने आंखों से न निरखे, जैसे हमारे ट्यूब लाइट लगाए है तो आंखों में चुभता है, जब हम यहाँ रहने को आए तो ये नहीं, बाहर कुछ नहीं थे, ये पूरे अंदर लगे हुए, उसके अंदर डायरेक्ट आंखों पर रोशनी नहीं आती है, वो बहुत है सारे, तीन तीन छह और दस, दस तो लाइट है ऊपर ट्यूब लाइट्स, मगर उसकी रोशनी आंखों पर नहीं आती है। कितने सालों तक वही, जब यहाँ स्वाध्याय होने लगा तब ये बाहर लगा लिया, वहां तो उनके तो रत्नों के थे, उसकी बात हो रही है। दीप की शिखा भी जिन्होंने आंखों से न निरखी, कमल के फूल में बसे हुए सुगंधित चावलों का भोजन ही जिनके चलता था, और भी तो समस्त आराम के साधन थे, पर जब यथार्थ ज्ञान होता है, यह मैं आत्मा समस्त परद्रव्यों से भिन्न, प्रभावों से विविक्त शब्द है, केवल विशुद्ध चैतन्य मात्र हूं, इस मेरे का किसी भी अन्य पदार्थ से कुछ संबंध नहीं है, यह मैं कहने से डायरेक्ट अपने को बता रहे, साक्षात मैं यह जो हूं, न किसी का स्वामी हूं, न करता हूं और न भोगता हूं, किसी अन्य का न करता हूं न भोगता हूं, अपने परिणामों का तो करता भोगता है ही, उसकी बात नहीं यहाँ पर, मैं न किसी का स्वामी हूं, न करता हूं न भोगता हूं, मेरे गुण अथवा पर्याय का किसी पर वस्तु में संपर्क और प्रवेश होता ही नहीं, संपर्क ने उसके साथ कहते ना, ये तो शास्त्र में तो चूमता नहीं, उसको स्पर्श तक नहीं करता, फिर यह मैं सबसे न्यारा केवल ज्ञान स्वरूप जैसा हूं तैसा उपयोग रखना कर्तव्य। परंतु हमने अपने को कैसा राग वाला मान लिया, क्रोध वाला मान लिया, बाल बच्चे वाला मान लिया, शरीर वाला, काला गोरा, धन वाला मान लिया, तो कहते जैसा हूं वैसा उपयोग रखना कर्तव्य है। जब ऐसा यथार्थ ज्ञान होता है और यथार्थ ज्ञान के प्रसाद से वैराग्य हो जाता है, क्या कहा, यथार्थ ज्ञान के प्रसाद से वैराग्य होना, और ये कैसा स्मशान वैराग्य भी हो जाता है, कोई घर का मर गया तो तात्कालिक बहुत वैराग्य हो जाता है, थोड़े दिन के लिए, फिर वापस मूल में, आपको बताया था ना स्टोरी, बहुत बार सुनी आपने, किसी के कैंसर में किसी की पत्नी मर गई तो हमको बुलाया वहां 10 दिन प्रवचन सुनाने के लिए, बहुत बहुत बात, उसको इतना रस आया उसमें, आप इसकी पुस्तकें क्यों नहीं करते, ऐसे में सब कुछ है, उपलब्ध है, बस आपको पढ़ने की देर, हाँ। तो फिर महीने भर के अंदर भी उसके बच्चे भी शादी योग्य थे, अब महीने भर के अंदर ही अंदर, हाँ, पति कहाँ गए दूसरी शादी करने, तो कहते वो तो स्मशान वैराग्य जिसको कहते, थोड़े टाइम के लिए रहता है। क्या कहते हैं, यथार्थ ज्ञान के प्रसाद से वैराग्य हो जाता है, तब वह सुकुमार, देखो किसी को कहने से, बहकाने से, या कोई ऐसा ही आवेश में आकर दीक्षा ले भी लेवे, या कोई अन्य भी व्रत आदि धारण करे, तो वो टिक नहीं पाता, क्योंकि वो तो आवेश में आकर, उसने वो भी एक प्रकार की कषाय ही कहो, या किसी के बोलने में नहीं ये करने से तुम्हारा कल्याण होगा, तो वो भोला जीव वो ही करने से मानता है, पर वो तो अंदर से ज्ञान हुआ नहीं है तो वो टिक नहीं पाता उसमें। और भी लिया हुआ छोड़ भी नहीं सकता तो उसमें शिथिलाचार भी हो जाता है फिर। तब वह सुकुमाल जिसको महल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिया जाता था, वह माता पिता का इतना प्रिय था, वे एक पल भी सुकुमाल को अन्यत्र न देखना चाहते थे। विरोध उन्हें सहन न था। इस प्रकार के ल्याड़ पार में पाले गए सुकुमाल जब विरक्त हुए तो अन्य कुछ उपाय न निरख कर रात्रि के समय वे धोतियां बांध बांध कर रस्सा सा बनाकर महल के पीछे से धोतियों के सहारे ही निकल गए। कितना सुकोमल था उनका शरीर। आधे रास्ते में जा रहे हैं तो भी अच्छे रास्ते में जा रहे हैं तो भी कंकड़ चुभते हैं और पैरों के तले से खून भी निकलता जाता है, लेकिन इस ओर उन्हें भान भी नहीं है। यह उपयोग जिस ओर रम जाता है उस उपयोग की दृष्टि में वही समाया हुआ रहता है। लौकिक में भी देखते हैं ना, अब यहाँ तो आत्मा की साधना के लिए वो था, उसमें उपयोग लगा था। लौकिक में भी अन्य भी कितने कष्ट आ जाए पर जो किसी ने ठान ली तो उसके पीछे पागल की तरह चला जाता है। सुकुमाल को केवल यह विशुद्ध ज्ञान स्वभाव मात्र मैं हूं ऐसा निर्णय हो चुका, उसी ओर दृष्टि है। इस कारण खून की ओर ख्याल भी नहीं जाता, चले जा रहे हैं मन को। वन में जाकर वे किसी योगीश्वर के समक्ष दीक्षा ले लेते हैं और आत्म ध्यान में अड़िग पद्मासन से बैठ जाते हैं। रास्ते में पैरों से गिरे हुए खून को चाटती हुई सियालिनी सुकुमाल के निकट पहुंची। सुकुमाल को देखते ही पूर्व भोग के स्मरण से वह बड़ी क्रुद्ध हो गई। उसने अपने बच्चों सहित सुकुमाल के शरीर का भक्षण करना शुरू कर दिया। 3 दिन तक ऐसे उपसर्ग में यह सुकुमाल कैसे अड़ी रहे। धुन की दृढ़ता। जिसको जिसकी धुन हो जाती है वह उस वस्तु की प्राप्ति के लिए सब कुछ सह सकता है। किसी को धन प्राप्ति की धुन हो तो सफर करते हुए में अनेक प्रकार के संकट आए उनको भी वह सह लेता है। ऐसे जिसे ज्ञाता दृष्टा रहने की, विशुद्ध आनंद भोगने की, सर्व विकल्पों से अलग होकर अपने आप के इस ज्ञान स्वरूप में प्रवेश करने की जिसे धुन है, ऐसे पुरुष को कैसे किसी बाह्य उपाधि शरीर आदि के आश्रय वेदना की तो अनुभूति होगी। यहाँ तो विशुद्ध आनंद को भोगना है उसको और इसकी धुन लगती है। वो तो बाह्य में भी देखते हैं किसी को धन की धुन है, या हम ऐसे भी देखते हैं कि अभी तो अभी अभी यौवनावस्था में आए हुए बच्चे बच्चियां, अब प्यार के लिए क्या क्या नहीं, कैसा भी जिसको कहेंगे विरोध सहन करके भी, कुछ भी कष्ट सहन करके वो धुन चढ़ी होती है उनको, यानी उसमें कोई विवेक नहीं रहता है उनके लिए, तो उसके प्राप्ति के लिए कुछ भी सह लेते हैं। धन्य है वे योगी राज जो बड़े लाड़ प्यार से भी पाले पोषे गए थे और जिनकी युवावस्था में अनेक अथवा मनप्रिय रमणियों ने विनय सत्कार और मिष्ट भाषण करके अथवा कला कौशल से जिनको प्रसन्न किया है। ये श्लोक की बात है, यहाँ लिखा है ना, श्लोक में जो लिखा था, श्यामांगीनां नयन कमलैः अर्चिता, यानी स्त्रियों ने उनको उनके लिए पाने, उनके प्रेम पाने के लिए उनका विनय सत्कार जो कुछ मिष्ट भाषण किए थे, जो जवानी में भी बड़े सुख के साधनों में रहे हैं ऐसे महापुरुष जवानी की अवस्था के बीच में ज्ञान पाले हुए ज्ञानी संत पुरुष की तरह विरक्त होकर आत्म साधन में मेरुवत निश्चल रहते हैं। ये उनकी ये धन्यवाद कह रहे, उनकी धन्य है कह रहे कि इसी यौवनावस्था में भी आत्म साधना में लगे। वहां ये हरणिया अपना खुजैला अंग खुजाने को निशंक हो ठूंठ समझ कर आती है। ये वृक्ष का जो ठूंठ रहता है, ऐसी अंतर्भावना के कारण जिनकी स्थिति हुई वे प्रशंसनीय है। वे पुरुष धन्य है जो आखिर सबका परिहार करके, परिहार ने त्याग, अपने विशुद्ध ज्ञान का उपयोग कर आनंद में मग्न रहा करते हैं। बैरी और उसका विजय। मोह भाव और ममत्व भाव हम आपके बैरी हैं। जगत में अन्य कोई पदार्थ बैरी नहीं है। हमने तो बैरी के लिस्ट में तो अन्य जीवों को डाल दिया है। कोई जीव मेरा, आगे लिखा देखो, कोई जीव मेरा दुश्मन नहीं है। ये सभी जीव चाहे उनकी चेष्टा इनके विषय साधनों में बाधक भी बने, तिस पर भी दूसरे जीवों ने केवल अपने कषाय की चेष्टा की है, दूसरे से कोई बैर भजा भी नहीं सकता है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में अपना गुण द्रव्य पर्याय प्रभाव असर कुछ भी नहीं पहुंचा सकता। तो प्रभाव तो है ना, असर तो है ना करके निमित्त के ऊपर ही जोर दिया जाता है, तो कहते कुछ नहीं है। यह तो सब जितने विभावों का परिणमन है, निमित्त नैमित्त के योग से प्रत्येक पदार्थ का अपने अपने उपादान में विभावों का परिणमन है। निमित्त की हाजिरी में वो उपादान का अपना वो परिणमन है, निमित्त का वो परिणमन नहीं, परिणमता वो द्रव्य स्वयं है। यह ज्ञानी पुरुष अपने को अशत्रु देख रहा है। मेरा दुनिया में कोई वैरी नहीं है। चाहे कोई अज्ञानी अपने चित्त में ऐसी भी कल्पना करे कि मेरा यह बैरी है, तिस पर भी कोई किसी का बैरी नहीं है। सब जो अपने अपने कषायों के अनुसार मन वचन और काय की चेष्टाएं किए जा रहे हैं, ऐसा सम्यक ज्ञान पाकर इस जीव को विश्राम होता है। यहीं रुकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान तय सूझे लो फालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मिली भाई।